ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. వాసుదేవాయ ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. శ్రీమద్ భాగవతం స్కంద 6 అధ్యాయ 12 శ్లోక సంఖ్య 1. అధ్యాయ శీర్షక హై వృతాసుర్ కీ యశస్వి మృత్యు. శ్రీ ఋషి ఉవాచ ఏవా జిహాసుః నృప దేహం ఆజౌ మన్యమానః శూలం ప్రగ్య అభ్యపదత్ సుర ఇంద్రం యథా మహాపురుషం కైటవః అప్సు. శ్రీ ఋషిరువాచ ఏవం జిహాసో నిపదేహమాజౌ మృత్యుం వరం విజయాన్ మన్యమానః. శూలం ప్రహృత్య భయపతః సురేంద్ర యథా మహాపురుషం కైటవోప్సు. శ్రీ ఋషిరువాచ ఏవం జిహాసో నిపదేహమాజౌ వరం విజయాన్ మన్యమానః. శూలం ప్రహృత్యా భయపతత్ సురేంద్ర యథా మహాపురుషం కైటవోస్సు. శీర్షీరువాచ ఏవం జిహాసో నిపదేహమాజౌ మృత్యుం వరం విజయాన్ మన్యమానః. శూలం ప్రజ్ఞా భయపతః సురేంద్ర యథా మహాపురుషం కైటవోప్సు. శ్రీ ఋషి ఉవాచ శిశుదే గోస్వామి నే కహా ఏవం ఇస్ ప్రకార జ్యాసుహు త్యాగనే కే లియే ఉత్సుక్ నిప హే రాజా పరీక్షిత్ దేహం శరీర ఆజౌ యుద్ధ మే మృత్యు వరం శ్రేష్ఠ విద్యా విజయ సే మన్యమానః. సోచతే హుయే శూలం త్రిశూల్ ప్రజ్ఞ లేకర్ అభ్యపత ఆక్రమణ కర్ దియా సుర ఇంద్రం స్వర్గ కే రాజా ఇంద్ర పర్ యథా జిస్ ప్రకార మహాపురుషం శ్రీ భగవాన్ పర్ కైటవః కైటవ నామక असुर ने अक्सुर जब सारा ब्रह्मांड जल मग्न था। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, अपना शरीर छोड़ने की इच्छा से वृत्रासुर ने विजय की अपेक्षा युद्ध में अपनी मृत्यु को श्रेष्ठ कर समझा। हे राजा परीक्षित, उसने अत्यंत बलपूर्वक अपना त्रिशूल धारण किया और बड़े वेग से स्वर्ग के राजा पर उसी प्रकार से आक्रमण किया जिस प्रकार ब्रह्मांड के जल मग्न होने पर कैटभ ने श्री भगवान पर बड़े ही बल से आक्रमण किया था। तात्पर्य सुनिए, यद्यपि वृत्रासुर ने इंद्र को बारंबार प्रेरित किया कि वह उसे अपने वज्र से मार डाले, किंतु इंद्र इतने बड़े भक्त को मारना नहीं चाहता था, इसलिए वज्र नहीं चला रहा था। जब वृत्रासुर ने देखा कि उसके प्रेरित करने पर भी वह आनाकानी कर रहा है, तो उसने बड़े वेग से इंद्र पर अपना त्रिशूल चलाया। वृत्रासुर को विजय में कोई रुचि नहीं थी, वह तो चाहता था कि वह मारा जाए जिससे तुरंत भगवान के धाम जा सके। जैसा कि भगवद गीता 4:9 में पुष्टि की गई है, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति, इस शरीर को त्यागने के बाद भक्त तुरंत भगवान कृष्ण के धाम चला जाता है और दूसरा शरीर धारण करने के लिए कभी नहीं लौटता। यही वृत्रासुर का अभिप्राय था। फिर से एक बार और अनुवाद सुनेंगे हम। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, अपना शरीर छोड़ने की इच्छा से वृत्रासुर ने विजय की अपेक्षा युद्ध में अपनी मृत्यु को श्रेष्ठ कर समझा। हे राजा परीक्षित, अपने अत्यंत बलपूर्वक अपना त्रिशूल धारण किया और बड़े वेग से स्वर्ग के राजा पर उसी प्रकार से आक्रमण किया जिस प्रकार ब्रह्मांड के जल मग्न होने पर कैटभ ने श्री भगवान पर बड़े ही बल से आक्रमण किया था। बहुत सुंदर कथा चल रही है वृत्रासुर की। वृत्रासुर जो है, हालांकि राक्षस योनि में है, लेकिन फिर भी भगवान के अनन्य भक्त हैं और इसी कारण से उनका नाम श्रीमद् भागवत में है। श्रीमद् भागवत में अक्सर आप देखेंगे एक तो असुरों का वर्णन किया गया है और दूसरा देवताओं का वर्णन किया गया है या फिर भक्तों का वर्णन किया गया है, लेकिन यहां तो दोनों ही भक्त हैं। वृत्रासुर भी भक्त हैं, इंद्र भी भक्त हैं, लेकिन भेद क्या है? वृत्रासुर भगवान के शुद्ध भक्त हैं, इंद्र जो है सकाम भक्त है। तो ये समस्या हम लोग अपने समाज में भी देखते हैं। जब सकाम भक्तों के बीच में ही अधिकांश कलह होते हैं, लेकिन शुद्ध भक्त जो है समझ जाते हैं कि ये सकाम अवस्था में है, कामनाएं हैं बहुत उनके भीतर, इसलिए उनके अंदर छेलने की क्षमता होती है। शुद्ध भक्तों के अंदर ये क्षमता रहती है, लेकिन जो सकाम भक्त होते हैं वो झेल नहीं पाते हैं और इस कारण से अपने अनर्थों का प्रदर्शन कहीं ना कहीं तो करते ही हैं, बोलचाल में, अपने व्यवहार में, अपने आचरण में, अपने प्रवचन में। तो अपने ही अनर्थों का प्रदर्शन होता है कीर्तन के समय, तो अपने अनर्थों का, ये आप जानते हैं कि किस तरह से, इसकी व्याख्या हम नहीं करेंगे यहां पर। तो इस प्रकार से इंद्र भी जो है अपने इस अनर्थों का, अपने अनर्थों का प्रदर्शन कर रहे हैं, है ना। और इसका इसका दूसरा तरीका भी है समझने का, वो आगे बताएंगे आपको। तो इस अध्याय जो का जो हम लोग सार आपको प्रस्तुत कर देते हैं, इस अध्याय में होने क्या वाला है और क्या हो रहा है। तो हम जानते हैं कि पिछले अध्याय में वृत्रासुर ने काफी उन्होंने लंबा प्रवचन दिया और भाव व्यक्त किया, उन्होंने अपना भाव व्यक्त किया, और उस भाव में हम देखते हैं कि वृत्रासुर की शुद्ध भक्ति का वर्णन मिलता है। ये जो अध्याय है या ये जो प्रसंग है, इसमें शुद्ध भक्ति के बारे में बड़े विस्तार से बताया गया है। तो इसलिए ये भाव वृत्रासुर का हमें समझने का प्रयास करना चाहिए कि वृत्रासुर का भाव है क्या, कि वृत्रासुर वास्तव में चाहते हैं कि वो भगवान की केवल सेवा करें। उनकी कोई इच्छा नहीं है कि वो स्वर्गलोक की प्राप्ति करें या देवताओं की योनियों में रहें, वो तो केवल भगवान की सेवा करना चाहते हैं। श्लोक संख्या 18 में पिछले अध्याय के उसमें ये भाव व्यक्त किया है उन्होंने किंतु यदि तुम युद्ध में अपने वज्र से मेरा सर काट लेते हो और मेरे सैनिकों को मार डालते हो, तो हे परमवीर इंद्र, मैं अपना शरीर को अन्य जीवात्माओं को भेंट करने में परम प्रसन्न हूं। इस कारण मैं अपने कर्म बंधन से छूट जाऊंगा और ये मेरा वो भाग्य होगा कि मैं नारद मुनि जैसे परम भक्तों के चरण कमलों की धूलि प्राप्त कर सकूंगा। देखिए क्या भाव है उनका, मतलब वो नहीं चाहते हैं कि उनको कोई पद मिले, कोई लाभ पूजा प्रतिष्ठा मिले, वो तो केवल भगवान की सेवा करना चाहते हैं और इस सेवा के लिए कुछ भी वो मोल चुकाने के लिए तैयार है। तो वृत्तासुर ने इस प्रकार से काफी सुंदर प्रवचन दिया और युद्ध भूमि में भी प्रवचन चल रहा है, युद्ध के समय प्रवचन चल रहा है, युद्ध करते हुए ये प्रवचन चल रहा है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया वो युद्ध भूमि में था, लेकिन युद्ध से पहले वो प्रवचन दिया, उसके बाद युद्ध प्रारंभ करने के बाद कोई प्रवचन नहीं था वहां, वहां तो केवल युद्ध युद्ध था। लेकिन यहां पर हम देखते हैं कि वृत्तासुर और इंद्र का जो युद्ध चल रहा है, वृत्तासुर बीच बीच में प्रवचन भी दे रहे हैं तो अपना भाव भी व्यक्त कर रहे हैं। तो ये सब जो है केवल प्राचीन समय में हुआ करता था या पिछले युगों में होता था, धर्म युद्ध जब होता था तो उस समय जो इस प्रकार का प्रवचन भी सुनने को मिलता था युद्ध भूमि में, लेकिन आजकल ऐसी कोई व्यवस्था नहीं। तो वृत्तासुर जो है उन्होंने देखा कि इंद्र जो है वो प्रेरित नहीं हो रहे हैं, इंद्र को इतना क्रोध नहीं आ रहा है, क्योंकि इंद्र भी देख रहे हैं जो भी अगर सकाम भक्त भी हैं लेकिन इतना भी दुष्ट नहीं होता है सकाम भक्त कि वो अन्य भक्तों को देखकर उनके ऊपर प्रहार करना शुरू कर दे। बहुत ज्यादा कनिष्ठ अवस्था में तो हो सकता है कि प्रहार भी करें, लेकिन सामान्यतः ऐसा होता नहीं। वाणी से तो हो सकता है कि बुराई की जाए, लेकिन शारीरिक रूप से तो कोई प्रहार करता है ये बहुत ही कम दिखाई पड़ता है वैश्विक समाज में, है कि नहीं। तो इस प्रकार इंद्र जो है वो प्रहार नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन वृत्तासुर ने सोचा कि मुझे क्रोध प्रकट करना होगा। तो वृत्तासुर ने क्रोध प्रकट किया और अपना त्रिशूल लेकर जो है इंद्र के ऊपर फेंका, और जब इंद्र के ऊपर फेंका तो इंद्र जो है अब अपने को बचाने के लिए फिर उन्होंने जो है अपने वज्र का उपयोग किया और उस वज्र से जो है फिर उन्होंने वृत्तासुर के ऊपर आक्रमण किया। तो ऐसा होने पर क्या हुआ, एक हाथ कट गया वृत्तासुर का। वृत्तासुर का जब एक हाथ कट गया तो वृत्तासुर जो है उन्होंने दूसरे हाथ का उपयोग किया इंद्र के ऊपर गदा फेंकने का, लोहे का गदा उन्होंने फेंका वृत्तासुर ने इंद्र के ऊपर, और इससे क्या हुआ कि इंद्र जो है उनके हाथ से वो वज्र छूट गया। और वज्र जब छूट गया तो फिर क्या हुआ, वज्र जब छूटा तो इंद्र अब शर्मा गए, उनको बहुत ही ठीक नहीं लगा, मतलब कि अब वज्र नीचे गिर गया मैं कैसे उठाऊं उसको। तो देवताओं के राजा हैं, अगर उनका कुछ अस्त्र शस्त्र गिरता है तो अन्य देवता भी देखेंगे, जब प्रदर्शन होता है तो फिर मान सम्मान की भी इच्छा रहती है कि कोई देख तो नहीं रहा है हमने गलत गा दिया है, या अष्टकम में एक जो है श्लोक नहीं बोला है, दस लोग देख तो नहीं रहे हैं, यह आवाज खराब हो गई बीच में, रिकॉर्डिंग ठीक से नहीं हो रही है। तो इस प्रकार जो है इंद्र सोच में पड़ गए कि क्या करूं मैं अब, इसके कैसे उठाऊं इस वज्र को। तो फिर जो है वृत्तासुर जो है वृत्तासुर लेकिन जो है धर्म युद्ध कर रहे थे, भगवान के शुद्ध भक्त हैं, क्योंकि वो चाहते नहीं थे कि इंद्र को वो मारे। वृत्तासुर तो चाह रहे थे कि इंद्र के द्वारा वो मर जाए और ताकि उनको भगवत धाम की प्राप्ति हो जाए। उनका उद्देश्य उनका लक्ष्य जो है भगवान के धाम जाने का था। तो फिर क्या हुआ, जब वृत्तासुर ने प्रेरणा दी उनको, फिर से उत्साह बढ़ाया कि जी उठाइए उठाइए अपने अस्त्र को उठाइए आप, है ना, नीचे गिर गया है, लीजिए लीजिए हाथ में लीजिए। फिर वृत्तासुर ने दोबारा प्रवचन दिया, यहां फिर प्रवचन शुरू हो गया। तो ये बड़ा ही मतलब अद्भुत दृश्य है ये वृत्तासुर की कथा में, कि युद्ध भी हो रहा है और प्रवचन भी हो रहा है, कैसे मेल होता होगा इसका, ये तो बड़ा ही हमारे लिए असंभव है सोचना, है कि नहीं, कि आप पूरे रजोगुण में युद्ध कर रहे हैं मान लीजिए और अचानक आपको प्रवचन देना पड़े बीच में, संभव है बताइए, सामान्य रूप से संभव है बताइए। मान लीजिए आप कहीं सेमिनार देने जा रहे हैं किसी कॉलेज में युवाओं के बीच में, اور آپ نے جو ہے روش پکڑ کیا. پہلے تو وہ یوا بیٹھیں گے نہیں وہاں پر, سب بھاگ جائیں گے نہیں. اور مان لیجیے وہ بیٹھ بھی گئے, کروتھت ہو گئے آپ, بہت اینگر مینجمنٹ کے اوپر آپ پروچن دے رہے ہیں, اور آپ نے اتنا کروتھ پکڑ کیا, اتنا کروتھ پکڑ کیا, یوواؤں نے جھیل لیا. شاید یہ بھی ایک پریزنٹیشن کا ایک بھاگ ہے, یہ کروتھت ہو گئے, دکھا رہے ہیں کہ کس طرح سے کروتھ ہوتا ہے. تو وہ یوا لوگ تھوڑے سے سہنشیل ہو کر وہ سن لیں گے آپ کا پروچن, آپ کا پریزنٹیشن, لیکن آپ کو تو اصلی کروتھ آ رہا ہے, آپ کو اصلی کروتھ آ رہا ہے, اور اس کروتھ کے بعد آپ بھول گئے کہ آپ کو کیا بولنا ہے, آپ کو یاد ہی نہیں, یہ پریزنٹیشن سارا بھول گئے, وہاں بھی پاور آف ہو گیا, لائٹ چلی گئی, اسکرین میں بھی کچھ نظر نہیں آ رہا ہے, آپ بھی بھول گئے کیا کروں میں کروتھ کے کارن. لیکن یہاں ایسا ایسی گھٹنا نہیں چل رہی, یہاں پہ اس پرکار کا درشٹان نہیں ہے. وتاسر جو یہاں پر پورن روپ سے کرشن بھاونا بھاوت ہیں, اور کروھ پرکٹ کرتے ہوئے بھی وہ کیا کر رہے ہیں, پروچن دے رہے ہیں, یہ ان کی کرشن بھاونا ہے. اس کو کہتے ہیں ویشنو. ویشنو جو ہے کسی بھی پرستھتی میں بھگوان کی سیوا کر سکتا ہے, تو اس لیے وہ کروھ کا اپیوگ کرتا ہے بھگوت سیوا کے لیے. وتاسر نے کروھ کا اپیوگ کس لیے, تاکہ وہ بھگوت دھام جا سکے, یہ ان کا ادیش تھا کروھ پرکٹ کرنے کا. ان کا ادیش یہ نہیں تھا کہ کروھ پرکٹ کر کے میں اندر کو مار دوں, وتاسر کا ادیش تھا کہ کروھ پرکٹ کروں اور اندر میرے اوپر پرہار کرے اور اس مادھیم سے میں بھگوت دھام کی پراپتی کروں, یہ وتاسر کی اچھا تھی. دیکھیے تو وتاسر کا جو کروھ پرکٹ کر رہا ہے وہ واستو میں ایک بھاری درشیہ تھا, آنترک کارن نہیں تھا کوئی, ان کا ہردے نرمل تھا بالکل. یہ نہیں کہ وہ کام کروھ اور لوبھ سے بھرے ہوئے تھے جو نرک کے تین دوار ہیں, اور وتاسر اپنا کروھ پرکٹ کر رہے ہیں اندر کے اوپر, آپ سمجھ رہے ہیں اس بات کو. تو وتاسر جو کروھ پرکٹ کر رہے ہیں وہ کرشن بھاونا بھاوت ہونے کے لیے ہے. تو ویشنو جو ہے کروھ پرکٹ کرتا ہے اس لیے بھگوان کی پرسنتا کے لیے, جس طرح سے ارجن نے بھی کروھ پرکٹ کیا کوروں کے خلاف, کیسے, بھگوان کی پرسنتا کے لیے, بھگوان کرشن کی پرسنتا کے لیے. ہمیں کروھ کا استعمال کرنا پڑے تو کرنا چاہیے, جیسے مایا وادی چھایا وادی جتنے بھی ہیں ہے نا, ان سب کے اوپر کروھ پرکٹ کرنا چاہیے ہمیں. تو جو بھی ہمیں ہمارے بھیتر دویش ہے, کروھ ہے, یہ سب ہم مایا وادیوں کے خلاف کریں. اس پرکار جب کروھ پرکٹ کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے, جیسے چاند قاضی کو, چیتنے مہاپرو چاند قاضی کے اوپر اتنے کرودھت ہوئے کہ چاند قاضی نے آ کر جو ہے اپنی سینا کو لے کے آئے, سینکوں کو لے کے آیا اور مردن توڑ دیا, بھکتوں کو پیٹا گیا. چیتنے مہاپرو جو پتہ چلا ان کو اتنے کرودھت ہوئے کہ 100,000 لوگوں کو مشالوں کے ساتھ وہ چاند قاضی کے گھر پہ پہنچے, چاند قاضی کہاں ہو تم, نکلو باہر, کرودھ پرکٹ کیا. یہ سپرفیشل تھا, پریزنٹیشن جاری ہے, چنتا نہ کریے. تو چاند قاضی جو ایک دم گھبرا گیا, وہ بھیبیت ہو گیا, اندر گھس گیا, وہ چھپ گیا. وہ اس نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے, تو 100,000 لوگ آئے مشال مشالے لے کر, مشالوں کو دیکھ کر ہی وہ گھبرا گیا, یہ ایک بار زندہ جلا دیں کہیں, آگ لگا دیں پورے عمارت میں, کہیں کیا ہوگا میرا. چیتنے مہاپرو آئے, انہوں نے پھر سارے وہاں کے باغیچے اجاڑ دیے سب بھکتوں نے, اور چاند قاضی کے پاس پہنچے. چاند قاضی اندر چھپا ہوا تھا, کہاں ہو نکلو, آپ کیسے مطلب سواگت کرتے ہیں اپنے اتھیتھیوں کا, اتھیتھی آپ کے گھر میں آئے ہیں اور آپ گھر کے بھیتر چھپے ہوئے ہیں, یہ آپ کو شوبھا نہیں دیتا. تو چاند قاضی جو اندر چھپا ہوا تھا, چاند قاضی کو کہا, چاند قاضی نے جب دیکھا چیتنے مہاپرو کو, کہا کہ دیکھو میں تو تمہارے رشتے میں ماما ہوں, اور تم اپنے ماما کے ساتھ اس پرکار سے ویوہار کرتے ہو, یہ بھی تو ٹھیک نہیں ہے نا. تم کہہ رہے ہو کہ میں اتھیتھی کا سواگت کروں, لیکن اتھیتھی اس طرح سے آئے تو کیسے سواگت کیا جائے, بتائیے آپ بتائیے. تو اس پرکار جو ہے چیتنے مہاپرو جو ہیں ان کو پھر سمجھاتے ہیں, ان کے ساتھ سنواد ہوتا ہے. کہنے کا ارتھ یہ ہے کہ چیتنے مہاپرو جو کروھ پرکٹ کر رہے ہیں اس میں ان کا کوئی اپنا نجی سوارتھ نہیں ہے, چاند قاضی کا ادھار کرنے ہیتو جو ہے شری چیتنے مہاپرو گئے ہیں. اس طرح سے کئی ساری گھٹنائیں ہم شاستروں میں دیتے ہیں, پر کئی ایسی گھٹنائیں ہیں. اسی طرح سے بھگوان نرسنگھ دیو نے بھی ہرنیہ کشپ کا ادھار کیا, کتنا کروھ پرکٹ کیا بھگوان نرسنگھ دیو نے, کہ یہاں تک کہ برہما جی جو ہیں سوچ پڑ گئے یہ ہو کیا رہا ہے. برہما جی شیو جی کے علاوہ جتنے بھی دیوی دیوتا تھے سب گھبرائے ہوئے تھے, سب کے آسن ہل رہے تھے. ہرنیہ کشپ نے اپنی بھرگٹی اوپر کر دی تو سب کے سنگھاسن ہلنے لگے, دیوتا گھبرا گئے, بھائی اتپن ہو گیا, पूरे ब्रह्मांड में प्रत्येक जीव भयभीत था। किसके कारण? भगवान नरसिंहदेव के क्रोध के कारण। लेकिन उस क्रोध का उपयोग उन्होंने हिरण्यकश्यप पर किया। लेकिन प्रहलाद महाराज का देखिए आप, उनको बिल्कुल भय नहीं था। प्रहलाद महाराज बिल्कुल निर्भीक थे। लक्ष्मी जी को आगे भेजा गया, ब्रह्मा जी को आगे भेजना चाहा, ब्रह्मा जी सोचने लगे मैं जाऊं कि नहीं जाऊं। प्रहलाद महाराज को फिर उन्होंने कन्विंस किया कि आप ही जाइए आगे, है ना, आपकी बात सुन लेंगे, आप ही इनको पैसिफाई कर सकते हैं, सांत्वना दे सकते हैं। तो प्रहलाद महाराज आगे गए। देखिए तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं वृत्तासुर जो है, यहां हम देख रहे हैं कि वृत्तासुर जो है उन्होंने हाँ फिर गदा चलाया, और गदा चला के जो है उन्होंने इंद्र का दूसरा हाथ भी जो है काट दिया। दूसरा हाथ जब कट गया तो हुआ क्या? तो फिर वृत्तासुर, अब उन्होंने वृत्तासुर ने क्या किया, उसने बहुत बड़ा रूप धारण किया, विराट रूप धारण कर लिया वृत्तासुर। विराट रूप जब धारण किया तो इंद्र ने आगे बड़े प्रहार करने के लिए, लेकिन वृत्तासुर ने क्या किया, अपना मुंह खोल लिया और इंद्र को निगल गए। तो इंद्र निगल गया, निगल लिया गया वृत्तासुर के द्वारा, और वृत्तासुर ने सोचा कि इंद्र का वध हो गया। वृत्तासुर को लगा वास्तव में तो वध ही है, अगर इंद्र जो है मुंह के अंदर चले गए, उनके पेट में चले गए तो हो गया फिनिश। तो वृत्तासुर ने यही सोचा कि वो मर चुका है इंद्र। तो विश्वनाथ जी ठाकुर आगे आखिरी श्लोक अध्याय के आखिरी श्लोक के तात्पर्य में लिख रहे हैं कि वास्तव में मृत्यु तो इंद्र की हुई थी, वृत्तासुर की नहीं, क्योंकि वृत्तासुर ने इंद्र को निगल लिया था। और उसके उपरांत वृत्तासुर ने क्या किया, सोचा कि अब इंद्र की मृत्यु हो गई है, अब मुझे इस देह को त्याग कर योग समाधि में लगना चाहिए, ट्रांस में होना चाहिए, भगवान का ध्यान करना चाहिए, भगवान का चिंतन करना चाहिए और भगवत धाम जाने की तैयारी करनी चाहिए। तो ऐसा वृत्तासुर ने किया। लेकिन इंद्र जो है अंदर ही घूम रहा था पेट के अंदर। उसके बाद नारायण कवच मिला था उसको, नारायण कवच उसको जो मिला था उस कारण से इंद्र जो है उसको कुछ हुआ नहीं, और इंद्र जो है पेट से बाहर निकल आया। और बाहर जब निकल आया तो वृत्तासुर ने वो अपना शरीर छोड़ दिया था, लेकिन इंद्र ने सोचा कि वृत्तासुर की मृत्यु अभी तो हुई नहीं है, और इंद्र ने वृत्तासुर का गला काटना शुरू कर दिया, गर्दन काटना शुरू कर दिया। लेकिन यहां बताया, भागवत में बताया कि वृत्तासुर का गर्दन काटने के लिए इंद्र को एक साल लग गया, 360 दिन लग गए। लेकिन वृत्तासुर तो जा चुके थे भगवान के चरणों में, आप गर्दन काटते रहो, वो तो मृतक शरीर। तो इस प्रकार जो है वृत्तासुर यहां पर, उस प्रकार वृत्तासुर भगवत धाम की उनको प्राप्ति हुई, भगवान के धाम गए। इस कारण से जो है वृत्तासुर युद्ध कर रहे थे, इसी कारण से, इसी भाव से वृत्तासुर इंद्र के साथ युद्ध कर रहे थे। उनका और कोई आशय नहीं था। भगवान के जो अनन्य भक्त होते हैं वो केवल भगवान की सेवा करना चाहते हैं, उनका और कोई आशय नहीं होता है। श्री चैतन्य महापुरुष यही भाव शिक्षा में प्रकट किया है, न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम जगदीश गामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्ति रहित दुख। अयुतकी भक्ति, अयुतकी भक्ति का मतलब क्या है, जिसमें कोई हेतु नहीं है, जिसमें कोई कारण नहीं है, जिसमें कोई रुकावट नहीं है। अयुतकी अप्रतिहता ये आत्मा सुप्रसिद्धति है कि नहीं, भागवत में लिखा है। कोई कारण नहीं है, कोई हेतु नहीं है, कोई रुकावट नहीं है, निरंतर भगवान की सेवा हो रही है, जन्म जन्मांतर तक भगवान की सेवा की इच्छा करता है भक्त। भगवान का भक्त जो है उसको और कोई इच्छा नहीं होती है। हमारी ऐसी इच्छा, हमने आपसे प्रश्न पूछे हैं, उन लोग राधिका रमन जी का जब दर्शन करें, हम कृष्ण बलराम जी का दर्शन करें, तो हम अपने आप से पूछे क्या हमारे हृदय भी ये इच्छा है, वृत्तासुर की तरह इच्छा है जो भाव वृत्तासुर ने पिछले अध्याय में प्रकट किया है, क्या वो भाव, क्या वो सेवा का भाव या शुद्ध भक्ति का भाव हमारे हृदय में है, या और भी कोई आकांक्षाएं हैं, और भी कोई हमारे अंदर इच्छाएं हैं इस संसार में रहने की। नहीं तो फिर क्या है, दोबारा संसार है पुनर्मूषी का भवन, फिर से चूहे बन जाओ। तो इसलिए जो है फिर कोई विशेष लाभ नहीं है। और जिस तरह से देखिए, एक बात और समझने की यहां पर यह है कि जिस तरह से एक व्यापारी होता है धन कमाने के लिए, اس کو پتہ چلتا ہے کہ ہاں مجھے بڑا منافع ہونے والا ہے، کروڑوں روپے کا منافع ہونے والا ہے. اس منافع کو کمانے کے لیے، اس پروفٹ کو کمانے کے لیے ویپاری جو ہے، بزنس مین ہے، وہ کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، کوئی بھی تپسیا سہن کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ شیل روپ گوسوامی بولتے ہیں کہ واستو میں کرشن کا چنتن ہمیں کیسے کرنا چاہیے، ایک ویپاری کی طرح. ایک ویپاری جس طرح سے دھن کا سدیو چنتن کرتا ہے، اسی طرح سے بھکت کو بھی بھگوان کا چنتن کرنا چاہیے سدیو. اور اس کرشن بھکتی کو پراپت کرنے کے لیے، شدھ بھکتی کو پراپت کرنے کے لیے کوئی بھی مول چکانا پڑے تو چکانے کے لیے تیار ہے. اگر آپ کو پتا چلے کہ یہاں پر آپ کے لیے جھمری تلیا میں یا کہیں بھی بہت دھن رکھا ہوا ہے، ہیرا رکھا ہوا ہے کروڑوں روپے کا، ابھی تروپتی میں ٹیمپل میں کسی نے ہنڈی میں 75 کروڑ روپے کا ہیرا ڈالا، 75 کروڑ روپے کا ہیرا. تو مان لیجیے آپ کے نام رکھا گیا ہو، لیکن آپ کو یہاں سے بیل گاڑی میں جانا پڑے گا، کوئی فلائٹ نہیں، کوئی گاڑی نہیں، کوئی کار نہیں، کوئی رولس رائز نہیں، کوئی بس نہیں، آپ کو بیل گاڑی میں جانا ہے. اور اس بیل گاڑی میں جا کے جب آپ پہنچیں گے رات کے 1 بجے جھمری تلیا کے بھیانک جنگلوں میں، جہاں شیر ہوتے ہیں، جنگلی جانور ہوتے ہیں، بھوت پریت ہوتے ہیں، وہاں پہ جا کر آپ کو وہ ہیرا ملے گا، تو کیا آپ خطرہ مول نہیں لینا چاہیں؟ آپ تو نہیں لیں گے خطرہ، لیکن ہم سامان لوگوں کی بات کر رہے ہیں. آپ کو تو ویسے ہیرا مل چکا ہے، پربھوپا جی کی طرف سے بھیٹ دیا گیا ہے آپ کو، لیکن اس ہیرے کی تلاش میں ویپاری جائے گا اور اس دھن کو پراپت کرنے کے لیے، اس ہیرے کو پراپت کرنے کے لیے جو بھی کچھ کرنا ہے وہ کرنے کے لیے تیار ہوگا. اسی طرح سے برتاسور کو بھگوت دھام جانا ہے، برتاسور بھگوان کی سیوا کرنا چاہتے ہیں، اس سیوا کو پراپت کرنے کے لیے برتاسور جو ہیں وہ کوئی بھی مول چکانا تیار، کوئی مول چکانے کے لیے تیار ہے. کرشن بھکتی رس بھاوتا متی کریتام یت کتو بھی لبھتے تترپی لولیم ایکلم مولیم کوٹی جنمن سکرتی نہ لبھتے. ابھی دیکھیے برتاسور کے ہردے میں کیا ہے، لالسا ہے، لولیہ ہے بھگوان کی سیوا پراپت کرنے کی. بھاو بھکتی کے سارے لکشن برتاسور یہاں پرکٹ کر رہے ہیں. بھاو بھکتی کا ایک لکشن کیا ہے، ورکتی. 9 لکشنوں میں سے ایک لکشن کیا ہے، ورکتی. تو ورکتی دیکھیے کتنی ورکتی ہے کہ وہ پروچن بھی دے رہے ہیں، اندر کے سمکھ کھڑے ہیں، یدھ بھی کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی بھگوان کا چنتن کر رہے ہیں. یہ ورکتی ہے. ورکتی جو ہے وہ بھکتی کا پرینام ہے. ورکتی کا پرینام بھکتی نہیں ہے. کیا ہے؟ بھکتی کا پرینام ورکتی ہے. واسودیو بھگوتی بھکتی یوگ پریورجتا جنیتی آشو ویراگیم جانم چیت اہت کم. جان اور ویراگ ستے ہی اتپن ہوتا ہے. تو ورتاسور راکشس یونی میں رہتے ہوئے بھی ان کے اندر ویراگ دیکھیے کتنا ہے، بھگوان کی سیوا کو پراپت کرنے کے لیے، بھگوان کی پریمئی سیوا کو پراپت کرنے کے لیے ورتاسور کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہیں. وہ کہہ رہے ہیں مجھے مارو لیکن مجھے کرشن کی سیوا دے دو. اسی طرح سے دیکھیے ہریداس ٹھاکر کو 22 بازاروں میں پیٹا گیا. جلادوں نے موقع دیا یہ ہری نام چھوڑ دو اور دباؤ آپ کو چھوڑ دے گا، یہ کیوں آپ ایسا کر رہے ہو؟ تو ہریداس ٹھاکر نے کہا کھنڈ کھنڈ ہوئے دے جائے جدی پران تبو آمی بدن نہ چھڑی ہری نام ہری ہری بول. تو یہ ہریداس ٹھاکر کا بھاو دیکھیے. ہریداس ٹھاکر کہہ رہے ہیں کہ کھنڈ کھنڈ کر دو میرے شریر کو، پیسز میں کٹ کر دو، لیکن میں ہری نام نہیں چھوڑنے والا ہوں. تو یہ کیا بھاو ہے ہمارا؟ اور ہمیں پتا چلا کہ 22 بازاروں میں ہمیں کوڑوں سے پیٹا جائے گا جلانوں کے دوارا، اور ہمیں کہا جائے کہ ہمیں مالا چھوڑنی پڑے گی. تو کیا ہم چھوڑیں گے کہ نہیں چھوڑیں گے؟ بتائیے، سچ سچ بتائیے، لیٹ اس بی آنےسٹ. ہم ایسے کتنے لوگ ہیں جو یہاں پر آنےسٹ ہیں؟ بتائیے، براہمن کا ایک لکشن ہے آرجوم، تو بتائیے، سچ بتائیے، آپ میں سے کتنے بھاگتے ہیں، ہم میں سے کتنے بھاگتے ہیں جو ایسی پرستھتی میں مالا چھوڑنے کے لیے تیار ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ بہت اچھی بات ہے، پنجابی باغ میں سبھی شدھ بھاگتے ہیں. بھگوان کما کریے، ہم سے اپرادھ ہو رہا ہے، ہم آپ کو جج کر رہے ہیں. تو یہاں بھکت جو ہے کرشن بھاوا بھاوت ہیں. تو آپ سب ہریداس ٹھاکر کے پچھوں پر چل رہے ہیں، اس میں کوئی سنشے نہیں، اس لیے آپ یہ کش اٹھانے کے تیار ہیں، آپ نے اس بات کا سمرتھن کیا ہے. تو ہریداس ٹھاکر کو 22 بازاروں میں پیٹا گیا جلادوں کے دوارا. ہریداس ٹھاکر شریر نہیں چھوڑ رہے تھے، سارا کش شری چیتنیہ مہاپربھو نے شریر میں لے رہے تھے. है ना, जब महाप्रकाश लीला हुई, हरिदास ठाकुर को जब भगवत प्रेम की कृपा दे रहे थे तो चैतन्य महाप्रभु ने दिखाया था अपने पीठ पर, देखो जब तुम्हें 22,000 में पीटा जा रहा था तो वो सारा कष्ट मैं ले रहा था। चैतन्य महाप्रभु की कितनी बड़ी कृपा हरिदास ठाकुर के ऊपर। तो इसी तरह से, क्योंकि यहां पर इस श्लोक में बड़ा अच्छा बताया गया है, क्या बताया गया है, यहां पे लिखा है कि उसने अत्यंत बलपूर्वक अपना त्रिशूल धारण किया और बड़े वेग से स्वर्ग के राजा पर उसी प्रकार से आक्रमण किया जिस प्रकार ब्रह्मांड के जल मग्न होने पर कैटव ने श्री भगवान पर बड़े ही बल से आक्रमण किया। मधु कैटव जो है उन्हें सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी के ऊपर आक्रमण किया था। वैदिक ज्ञान जो वैदिक शास्त्र हैं उनकी उन्होंने चोरी कर ली ब्रह्मा जी से, लेकिन ब्रह्मा जी की रक्षा के लिए, वैदिक शास्त्रों की रक्षा के लिए भगवान ने हयग्रीव अवतार लिया और वैदिक शास्त्रों को बचाया। इसलिए कोई अगर वास्तव में वैदिक शास्त्रों का ज्ञान चाहता है, जो चाहता है कि भागवत समझे, शास्त्रों का ठीक ठीक ज्ञान हो, तो उसको हयग्रीव अवतार से प्रार्थना करनी चाहिए। तो मधु कैटव के ऊपर जो है, मधु कैटव ने जो आक्रमण किया ब्रह्मा जी के ऊपर, उसके बाद जब भगवान ने रक्षा करनी चाहिए तो भगवान के ऊपर भी आक्रमण किया मधु कैटव ने, इस तरह से मधु कैटव का उद्धार किया है ना। तो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं इसी तरह से भक्त जो है वो ज्ञान का वितरण करते हैं, प्रचार करने के लिए बाहर निकलते हैं, लेकिन उनको ऐसे कई असुर मिलते हैं जो आक्रमण करते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं चिंता न करें, ऐसे भक्तों को कभी कष्ट नहीं होगा, ऐसे भक्तों के ऊपर कोई हानि नहीं होगी, क्योंकि भगवान जो है ऐसे भक्तों की रक्षा करते हैं जो ज्ञान का वितरण करने के लिए निकले हैं बाहर, जो प्रचार करना चाह रहे हैं। तो इस प्रकार जो है हम समझ सकते हैं मधु कैटव का जिस प्रकार उद्धार किया, उसी तरह से भगवान भी उद्धार करते हैं भक्तों के माध्यम से जो ग्रंथों का वितरण कर रहे हैं सभी लोगों को कृष्ण भावना भावित बनाने के लिए। तो हम लोगों को भटकना नहीं है मार्ग से, हम लोगों को मार्ग से भटकना नहीं है कि हम भटक ना जाएं, ये हमारे हमेशा आशय रहना चाहिए जब इस संस्था में आते हैं। आज हमारे इस कौन संस्था की क्या है, कितना वर्ष हो गया, 46 साल बीत गए हैं, तो बहुत लंबा समय नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है कि बहुत लंबा समय हो गया है। 1986 में प्रभुपाद जी ने इस्कॉन की स्थापना की, न्यूयॉर्क में इनकॉर्पोरेशन हुआ, लेकिन प्रभुपाद जी संस्था की स्थापना किस उद्देश्य कर रहे हैं? तो ये तो खैर ठीक है, एक्सटर्नल बात है कि संस्था की स्थापना हुई तो बड़ी खुशी की बात है, हरी हरी, वो सब ठीक है, लेकिन प्रभुपाद जी ने इस संस्था की स्थापना किस उद्देश्य से की है, किस आशय से की है? इसलिए प्रभुपाद चाहते थे कि ऐसा वैसा समाज की स्थापना हो जहां पर कोई भक्त किसी भक्त से द्वेष ना करे, प्रत्येक भक्त दूसरे भक्त से प्रेम करे, एक दूसरे के प्रति सेवा की भावना हो, गोपी भर्तुर पद कमय और दास दास अनुदास, इस भावना से श्रील प्रभुपाद ने इस संस्था की स्थापना की थी। प्रभुपाद ने कहा इस संस्था की स्थापना मैंने इसलिए की है ताकि इन केंद्रों के माध्यम से भक्तों को अवसर मिले श्रवण कीर्तन का, और भक्त जो है कृष्ण भावना भावित हो सके। इस नाम में, इस कौन में, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस, इसमें सबसे महत्वपूर्ण शब्द है कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावना भावित होना। कई बार हम लोग संस्था के बारे में इतने कॉन्शियस हो जाते हैं कि हम कृष्ण भावना को ही भूल जाते हैं। हम संस्था संस्था करते रहते हैं और भूल जाते हैं कि संस्था में भक्त भी हैं, हम भूल जाते हैं कि भक्तों के बीच में संबंध होगा, भक्तों के बीच में प्रेम होगा, तभी हम संस्था को बनाए रख सकते हैं। लेकिन भक्तों में अगर संगठन नहीं हुआ, भक्त अगर मिलजुल कर सेवा ना करें तो क्या होगा, ये संस्था बिगड़ जाएगी, जैसे शिल भक्ति सिद्धांत ठाकुर के समय में हुआ था। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि आपका मेरा प्रति प्रेम अगर है तो कैसे पता चलेगा मेरे जाने के बाद कि कितना आप सभी भक्तगण जो हैं इस संस्था को बनाए रखने में एक दूसरे का सहयोग करते। तो ये परीक्षा है हम सबके लिए, क्योंकि प्रभुपाद जब तक थे तो सब लोग मिलजुल के प्रभुपाद जी की पूजा करते थे, उनकी आज्ञा का पालन करते थे, सब लोग मिलजुल के रहते थे। प्रभुपाद जी आने के बाद कई भक्त बिखर गए थे, आप जानते हो इस बात को। तो ये सब परीक्षा हम सबके साथ भी होगी, हम ये ना सोचें कि हमारे साथ कुछ नहीं होगा, और हम लोग जो है कृष्ण प्रेम में जो है डूबे होंगे, है ना? नहीं, ये सब हमारे लिए भी परीक्षा होगी। हम सबको भी परीक्षा से गुजरना होगा। गुरु के जाने के बाद, वरिष्ठ वैष्णव के बाद जाने के बाद, हमारे संस्था में कई लीडर्स लेके चले गए, प्रभुपाद जी के शिष्य कई चले गए हैं, है कि नहीं? बहुत कम बचे हैं अभी। 5000 प्रभुपाद जी के शिष्यों में से बताइए कितने भक्त बचे हैं अभी। कई लोगों ने शरीर छोड़ दिया, कई लोगों का तिरुभाव हो गया। एक से बढ़कर एक महाराज लोगों का दर्शन हम लोगों ने किया शुरू में। वो कहां है वो सब? कभी विरह होता है हमें उनका? नहीं होता। तो दुखी बात। हमें याद है वो दिन जब हिजूर तमाल कृष्ण महाराज जी आया करते थे दिल्ली में, या हिजूर गौर गोविंद महाराज का दर्शन होता था मायापुर में, हिजूर श्रीधर महाराज आते थे दिल्ली में, आते थे आपके पंजाबी बाग में भी आते थे। हम भूल गए क्या वो दिन? अगर हमें कृष्ण भावना भावित होना है और संस्था को चलाए रखना है जो 1966 में स्थापना हुई जिसकी, उसके लिए हमें अपने आप को कृष्ण भावना भावित बनाना पड़ेगा। सबसे बड़ा प्रचार क्या है? सबसे बड़ा प्रचार है कि स्वयं को कृष्ण भावना भावित बनाएं। यह है असली प्रीचिंग। हमने दुनिया भर के लोगों को तो भक्त बना दिया, लेकिन खुद हमारी माला लटक रही है और खुद हम सो रहे हैं प्रवचन के दौरान, या खुद हम लोग सुबह नहीं उठ रहे हैं। इसका मतलब हम संस्था में रहते हुए भी संस्था के प्रति जो है एक बहुत बड़ा अपराध कर रहे हैं। संस्था में रहते हुए हम धोखा दे रहे हैं अपने आप को, किसी और को नहीं तो खुद को धोखा दे रहे हैं। तो क्या लाभ बताइए? यह संस्था को एक इमारत नहीं है, इमारत एक संस्था का एक भाग है। इसलिए जब तक हमारे ने बड़ा अच्छा बताया था, ये जो इमारत है, जो बिल्डिंग है आपको दिखाई दे रही है, उन्होंने कहा यह बिल्डिंग जो है इस्कॉन का एक भाग है, लेकिन यह अपने आप केवल इस्कॉन नहीं है। इस्कॉन कौन है? आप सब ये हैं इस्कॉन। आप सब मिलकर जो है ये इस्कॉन संस्था बनते हैं। ये इमारतें केवल इसलिए बनाई जा रही हैं ताकि लोग जो है यहां पर आकर भक्तों का संग उठा सकें, भक्तों के संग का लाभ उठा सकें। अन्यथा इसका कोई और आशय नहीं है। हमने ये किया है, हमने वो किया है, हमने ये रिजल्ट प्राप्त किए हैं, हमने इतना लक्ष्मी संग्रह किया, हमने ये अचीवमेंट्स किए हैं, हमने इतनी ग्रंथ बांट दिए हैं, इतने सारे मंदिर बनाए हैं, लेकिन उद्देश्य क्या है सबका? इसका उद्देश्य है कि हम कृष्ण भावना भावित हो, स्वयं कृष्ण भावना भावित हो। यह प्रभुपाद जी की संस्था का उद्देश्य है। यह तो कोई फायदा नहीं है। सब हम सुपरफिशियल प्लेटफॉर्म पर रहेंगे और कई साल बीत जाएंगे, कई वर्ष बीत जाएंगे, कई जन्म बीत जाएंगे, लेकिन कभी हम कृष्ण भावना भावित नहीं हो पाएंगे, क्योंकि हम केवल इतने साल में केवल बिल्डिंग कॉन्शियस बने रहे या रिजल्ट कॉन्शियस बने रहे, लेकिन कृष्णा कॉन्शियस कब बनना है ये इसके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं, कभी विचार भी नहीं किया है। क्या जरूरत है इसकी? हम सोचते हैं। इसलिए सबसे प्रथम कर्तव्य है इस संस्था को प्रभुपाद जी ने कहा दिस इज अवर हरे कृष्णा मूवमेंट। ये हरे कृष्णा मूवमेंट है तो इसमें हरे कृष्ण महामंत्र का जप होना चाहिए, वो भी ध्यानपूर्वक। अभी हम लोग वृंदावन में थे, सोलन राधा गोविंद महाराज का प्रवचन बहुत सुना था हमने, बहुत सुंदर बात बताई। मार ने कहा कि अगर हरिनाम को हम आदर देते हैं तो आदर देने का मतलब क्या है? आदर देने का मतलब है निरंतर हरिनाम का उच्चारण करना। और बहुत अच्छी बातें बताई उन्होंने, कहा कि अगर प्रलय भी आ जाए तब भी आप जब के समय किसी से बात ना करें। बोलते हैं कि हम देखते हैं, बड़े दुख की बात है, कई भक्त हैं वो मोबाइल में लगे हुए हैं, एक हाथ में मोबाइल है, एक हाथ में बीड बैग है। तो ये सब जो है इस्कॉन नहीं है। ये हम कहें कि हम मोबाइल में बात करते हैं और हम इस्कॉन में हैं, दैट इज चीटिंग, ये धोखा है। अगर हम इस्कॉन में हैं तो हमें ध्यानपूर्वक जप करना चाहिए। थोड़ा हैवी है सुनने में, लेकिन ये फैक्ट। हम कह रहे हैं जी हम इस्कॉन में हैं, वो सब भाग गए हैं, वो सब चले गए हैं, कोई गौड़ियामठ चला गया, कोई राधाकुंड चला गया, कोई अमेरिका चला गया, कोई रशिया चला गया, कोई उसको लेके भाग गया, कोई इसको लेके भाग गया, लेकिन आप खुद ही जप नहीं कर रहे ध्यान से, आपकी माला खुद ही लटक रही है। तो फिर तो इसलिए ये बहुत जरूरी है, इसे बहुत समझना जरूरी है कि कौन कहां गया है। इस बात पे हमें इतना चिंता नहीं करना है, चिंता ये करनी है कि जीवन के अंत काल में हमारे अपने बैंक अकाउंट में कितनी कृष्ण भावना मौजूद है। हरी हरी तो सब फालतू है ना। वृद्धाश्रम की तरह अगर हम बने तो कोई फायदा है, नहीं तो इंद्र की तरह सकाम भक्त रहेंगे तो कोई लाभ नहीं है। इंद्र को पद मिल गया वापस, वृद्धासुर बेचारे शरीर छोड़ के धाम चले गए, उनके ऊपर विशेष कृपा हो गई भगवान की। लेकिन इंद्र तो प्रभुपाद जी प्रवचन परपोट में कह रहे हैं तात्पर्य में, इंद्र तो स्वर्गलोक में सड़ रहे हैं। कहना नहीं चाहिए लेकिन प्रभुपाद ऐसे कह सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि इंद्र हालांकि भक्त है लेकिन सकाम भक्त है, लेकिन ऐसे सकाम भक्त बने का कोई विशेष लाभ नहीं है, क्योंकि इतना ऐश्वर्य है स्वर्गलोक में, वह क्या भक्ति होगी, बिल्कुल भक्ति नहीं होगी। इसी तरह से जिस तरह से इंद्र ने वृत्रासुर के ऊपर आक्रमण किया, इसी तरह से इंद्र जैसी जो कामनाएं हैं, इंद्र जैसी जो भौतिक कामनाएं हैं, वो हमारे ओर आक्रमण करती हैं जब हम भक्ति प्रारंभ करते हैं। भक्ति जब प्रारंभ करते हैं तो क्या होता है, भक्ति जब करते हैं तो यश फैलता है, बहुत लाभ होता है, पूजा होती है, प्रतिष्ठा मिलती है, भक्त कई आपके गुणगान करते हैं, है कि नहीं, तो उसमें हम फूल जाते हैं गुब्बारे की तरह, बैलून की तरह फूल जाते हैं, और हमेशा इंतजार करते हैं क्या कब वो आएगा वो दिन जब मेरी कोई तारीफ करेगा। प्रभुपाद क्या कहते हैं, ह्यूमिलिटी का मतलब क्या बताते हैं प्रभुपाद, ह्यूमिलिटी का मतलब यह है कि एक भक्त को जो है वो उसकी आकांक्षा नहीं होनी चाहिए, उसको इंतजार नहीं करना चाहिए कि कब उसकी प्रशंसा होगी, कब उसको आदर दिया जाएगा, इसको कहते हैं ह्यूमिलिटी। तो कहने का मतलब यह है कि ये अनर्थ है जो माधुरी कादंबरी में विश्वनाथ चक्र ठाकुर ने बताया है, भक्ति उथ अनर्था या तरंग रंगनी, विश्वनाथ चक्र ठाकुर बता रहे हैं तरंग रंगनी, भक्ति के तरंगे जब उड़ती हैं तो उसमें रंगनी होता है, यानी कि आनंद मिलता है, बड़ा सुख मिलता है जब कोई माला बनाता है कि नहीं, जब कोई प्रशंसा करता है, जब कोई रिकॉर्डिंग करता है, जब कोई वीडियो रिकॉर्डिंग करता है, जब कोई किताब लिखता है आपके बारे में, जब आपके लिए कोई कविता लिखता है, आपकी कोई प्रशंसा करता है, हम फूले नहीं समाते हैं, बड़ा अच्छा लगता है अंदर से, बड़ा नहीं नहीं प्रभु जी ये सब मत करिए ये सब अच्छा नहीं, भीतर से बड़ा सुख हो रहा है हमें। प्रभुपाद ने ये संस्था इस उद्देश्य से नहीं बनाई है, प्रभुपाद ने संस्था जो है इसलिए नहीं बनाई है कि हम भीतर से भक्ति उत जो अनर्थ है उसके द्वारा सुखी होने का नाटक करें। तो ये भक्ति उत अनर्थ है, लाभ पूजा प्रतिष्ठा तरंग रंगनी, तो क्या है इससे हम फंस जाते हैं, हम मार से भटक जाते हैं, हम भूल जाते हैं वो दिन किस लिए आए थे हम इस संस्था में, हम भूल जाते हैं वो दिन कि किस लिए हम भक्तों के संग में आए थे, हम भूल जाते हैं कि शुरू में कितने गंभीर थे, अब कितनी सारी उप शाखाएं पैदा हो गई हैं, जंगली पौधे उग गए हैं साथ साथ, या कभी था ही नहीं असली पौधा, जैसे हम बताया था पिछली बार हमने कि असली पौधा था ही नहीं, प्रथम दिन से ही पहले दिन से ही उप शाखा में ही अपना जीवन बिता रहे हैं। हिजोल राधा गोविंद महाराज ने बड़ा अच्छा बताया था, चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा है वो सब कुछ सुना जी, बहुत सुंदर सुनाया है महाप्रभु की शिक्षा श्री रूप गोस्वामी, तो उन्होंने बड़ा अच्छा बताया कि अगर उप शाखा ही है प्रथम दिन से तो फिर दोबारा कहां उम्मीद है कि हम मूल शाखा को दोबारा स्थापित कर पाएंगे, लेकिन पहले अगर मूल शाखा रही है बाद में उप शाखा है तो उसका छेदन किया जा सकता है। चैतन्य महाप्रभु का प्रथम ही उप शाखा को रे छेदन तवे मूल शाखा बाड़ी जाए वृंदावन, कि जब तक ये मूल शाखा का छेदन नहीं कर लोगे तब तक ये शाखा जो है नीचे वाली ये वृंदावन कैसे जाएगी, इसका छेदन करो। लेकिन अगर यही है और ये है ही नहीं तो फिर ये कहां से आएगा, ये समस्या है हम सबके साथ, हम भूल जाते हैं। इस प्रकार हम लोग कई अर्थों में फंस जाते हैं, निषिदाचार, कूटी नाटी, जीव हिंसा, लाभ पूजा प्रतिष्ठा, ये सब क्या है, चैतन्य महापुरुष कह रहे हैं ये सब उप शाखा गण है, इससे दूर रहना चाहिए, ये आते इसको थूकना चाहिए इसके ऊपर। ये कब होगा, जब नाम में रुचि होगी। हरिदास ठाकुर का क्या कारण था, हरिदास ठाकुर जो है वो कह रहे मुझे खंड खंड कर दो मेरे शरीर को, क्या कारण है, उनकी आसक्ति नाम में, उनका प्रेम भगवान के पवित्र नामों में। जब तक ये जागृत नहीं होगा हम दिखावा भी करेंगे कि नहीं नहीं हमें ये सब नहीं चाहिए, भीतर से तो इच्छाएं बनी रहेंगी। वास्तव में देखा जाए जब तक हम भोग और ऐश्वर्य के प्रति आसक्त रहते हैं हमें बस यात्मिक बुद्धि हो ही नहीं सकते। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया प्रत चेतसाम व्यवस्यात्मिक बुद्धि समाधो न विधीयते। तो जब तक हम भुक्ति नाम का उच्चारण करते रहेंगे तब तक शुद्ध नाम का उच्चारण कैसे निकलेगा, तब तक तो नामाभास भी नहीं होगा। इसलिए कहने का अर्थ यह है कि 16 माला जो करना है यह पर्याप्त नहीं है, अगर हम प्रचार करना चाहते हैं, माया से लड़ना चाहते हैं। 16 राउंड्स क्या है मिनिमम, प्रभुपाद ने बताया, मैक्सिमम नहीं बताया है। हम लोग सोचते 16 राउंड का कोटा हो गया, आज का झंझट खत्म, टेंशन इज ओवर, अब कल सुबह मिलेंगे आपसे, हरि बोल। यह है विडंबना, यह है दुख, यह केवल रिचुअल है, यह केवल फॉर्मेलिटी हम पूरा कर रहे हैं, इसको कहते हैं मैकेनिकल जप। श्री चैतन्य महाप्रभु प्रसन्न होते हैं जब हम 17th राउंड करते हैं, 16 राउंड नहीं। हम सब भक्तों को प्रयास करना चाहिए अधिक से अधिक माला करने की। इसका मतलब ये नहीं कि हम सेवाएं छोड़ के, प्रचार छोड़ के माला ही करते रहे। कहने का अर्थ है कि जब भी हमें समय मिले, प्रजल्पा के लिए हमारे पास बहुत समय है, फेसबुक पर जाने के लिए बहुत समय है, बहुत सारे साइट्स पर जाने के लिए बहुत समय है, लेकिन जब हरि नाम लेना होता है तो हम बोलते हैं बिजी हैं। अगर कोई माला कर भी रहा बेचारा ध्यान से, वो ये तो भजना नदी है, ये बाबा जी बन गया है। कितने दुख की बात है कि संस्था में रहते हुए भी हम समझ नहीं पाए कि प्रभुपाद ने हमें क्या दिया है। इसका मतलब आर्टिफिशियल प्लेटफॉर्म में अपना जीवन बिता रहे हैं हम लोग, और आर्टिफिशियली रहेंगे हमेशा के लिए, हम केवल डायरामा बने रह जाएंगे। ऐसे कई डायरामास हम देखते हैं, भगवदगीता म्यूजियम में है, हमारे दिल्ली मंदिर में है, तो वैसे बस वो भी बोल रहे हैं, प्रवचन दे रहे हैं, सब हो रहा है। तो उस डायरामा में हमारे अंदर और डायरामा में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है, हम केवल एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बने रह जाते हैं। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हम बोलते हैं, ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, लेकिन अब खुद ही पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, इसमें क्या आप संशय है? तो इस प्रकार हम लोग जो है भूल जाते हैं अपने जीवन का लक्ष्य। भीष्म पितामह के देना देखिए, भीष्म पितामह बाणों की शैया में लेटे हुए हैं, लेकिन किसका दर्शन करना चाह रहे हैं? परम भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करना चाह रहे हैं। भीष्म पितामह की और कोई आशा नहीं है, कोई आकांक्षा नहीं है, वो तो कह रहे हैं कि जब तक भगवान का दर्शन नहीं होगा तब तक मैं शरीर नहीं छोड़ने वाला। और भगवान क्या कहते हैं? भीष्म पितामह कहते हैं कि आप उनको उपदेश दीजिए, इन पांडवों को, कौरवों को। भगवान कहते हैं कि नहीं नहीं आपके होते हुए मैं कैसे भूल सकता हूं, आप पितामह हैं, आप उपदेश दीजिए। तो भीष्म पितामह से द्रौपदी जी पूछती हैं, क्या पूछती हैं? पूछते हैं कि पितामह ये बताइए, जब वहां पर सभा में मेरा अपमान हो रहा था, वस्त्र हरण हो रहा था, उस समय तो आप चुप रहे, अभी आप उपदेश दे रहे हैं, ये क्या बात है? भीष्म पितामह ने कहा कि उस समय मैं इन कौरवों का अन्न खा रहा था, वो सब निकल गया आज, देख रहे हो खून, वो सारा अन्न निकल गया, इसलिए अब मैं बोल पा रहा हूं। कहने का अर्थ यह है कि जब तक हम लोग पवित्रता का पालन नहीं करेंगे, जब तक हम नियमों का पालन ठीक से नहीं करेंगे, जब तक हम ध्यानपूर्वक जप नहीं करेंगे, तो तब हम लोग क्या कर रहे हैं? इसी प्रकार रहेंगे, कमजोर रहेंगे। फिर हम ये नहीं कह सकते हैं कि हम इस्कॉन में हैं। इस्कॉन में रहने का मतलब है कि प्रभुपाद जी चाहते थे बहुत ऊंचा आदर्श, बहुत सारी आशाएं थी प्रभुपाद जी की हमसे, तो उस स्टैंडर्ड में पहुंचना है। देखिए चैतन्य महाप्रभु ने छोटा हरिदास ने क्या किया, छोटा हरिदास की कोई गलती थी? छोटा हरिदास ने केवल जाकर चावल मांगे, हां प्रभुपाद कहते हैं वो थोड़ा लस्टफुली ग्लैंस किया माधवी के ऊपर, और छोटा हरिदास जिस प्रकार से जब देखा तो ये चैतन्य महाप्रभु समझ गए कि इसने ऐसा किया है। छोटा हरिदास जब लेके आए चावल, लेके आए और अन्य जो सामान थे वो लेके आए, तो फिर बताया कि चैतन्य महाप्रभु को भगवान आचार्य ने बताया कि ये लेके आए हैं आपके लिए खीर प्रसाद। चैतन्य महाप्रभु, बड़ी अच्छी बात है, कहां से लेके आए? तो छोटा हरिदास ने बताया कि इस तरह माधवी से लेके आए, बहुत अच्छी बात है, यहां से निकल जाओ, मुंह मत दिखाओ ना, गेट लॉस्ट। चैतन्य महाप्रभु का स्टैंडर्ड देखिए आप, है ना, ये चैतन्य महाप्रभु का स्टैंडर्ड है कि चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय में अगर हम है कि हम महाप्रभु के अनुयायी है, हम रूपानुग गौड़िया वैष्णव हैं और हम एकादशी में भी फीस खा रहे हैं, ये तो रूप गोस्वामी के अनुगत होने का प्रमाण नहीं? क्या रूप गोस्वामी और रघुनाथ दास गोस्वामी, इन गोस्वामी ने हमें यह सिखाया कि एकादशी के दिन आप फीस खाइए? ठीक है, अगर आप उपवास नहीं कर सकते तो जल पी सकते हैं, जल नहीं पी के रह सकते तो आप फल खा सकते हैं, लेकिन एकादशी फीस का कौन से शास्त्र में वर्णन है? प्रभुपाद ने शुरू में अनुमति दी क्योंकि प्रभुपाद जानते थे कि ये लोग जो है इस तरह से कृष्ण भावना को नहीं अपनाएंगे, अगर बहुत नियम ना डालूंगा। लेकिन आप प्रभुपाद जी कन्वर्सेशन में अगर सुनेंगे ध्यानपूर्वक, प्रभुपाद आप पूछते हैं, जब प्रभुपाद से पूछे एकादशी प्रसाद के बारे, प्रभुपाद ने कहा अधिक से अधिक आप फ्रूट्स ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि हम लोग क्योंकि पहले ऐसा हो रहा था कि नए लोगों को खासकर जो विशेष रूप से जो विदेशी हैं भक्त, उनको स्थित करने के लिए संस्था में उनको ठीक से सेवा में लगाए रखने के लिए शुरू में प्रभुपाद ने प्रोत्साहित किया, लेकिन अब उसका जीवन भर का उद्देश्य बना लें कि हाँ जीवन भर के लिए प्रभुपाद जी का इंस्ट्रक्शन है एकादशी में फीस प्रसाद होना चाहिए। ये डिस्टॉर्टेड इंटरप्रिटेशन है। इस प्रकार की कई धारणाएं बना लेते हैं और हम कहेंगे कि हम प्रभुपाद जी की संस्था में, तो आज इनकॉर्पोरेशन डे है तो हम लोग याद रखें कि प्रभुपाद जी ने हमें ये जो आंदोलन दिया है, ये संस्था दी है, एक बहुत ऊंचा आदर्श स्थापित करने के लिए हमें आंदोलन दिया है। इसको हम सबको संभाल के रखना, ये बहुत बड़ी धरोहर है, ये बहुत बड़ा धन है, बहुमूल्य है। अगर इसको हम संभाल के नहीं रखेंगे भक्त लोग, तो कौन संभालेगा? इसलिए अगर भक्त टूट जाएंगे और भक्त जो है वो सकाम अवस्था में रहेंगे, उसका लाभ, उसका दुरुपयोग बाहर के कोई लोग आके करेंगे और हमारे पीछे बंटवारा हो जाएगा, हम सब बिखर जाएंगे, फिर माया भावना भावित हो जाएंगे हम पूरी तरह से। तो इसलिए हम लोग याद रखें, वृत्तासुर की कथा में बहुत सुंदर शिक्षाएं हैं पिछले अध्याय में, उस पिछले अध्याय को हमें बार बार पढ़ना चाहिए। क्यों बार बार पढ़ना चाहिए? ताकि वो जो गुण है हमारे भीतर प्रवेश करें। श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने कहा है कि 26 वैष्णव के गुण हैं, अगर कोई शरणागत होता है भगवान की सेवा में तो बाकी सारे गुण उसके अंदर भीतर आने लग जाते हैं। तो अलग से हमें इनके लिए प्रयास नहीं करना पड़ता है, केवल शरणागति की आवश्यकता है। जैसे हम कृष्ण की शरण, भगवान की शरण लेते हैं, गुरु की शरण लेते हैं, वैष्णव की शरण लेते हैं, वो सारी योग्यताएं, वो सारे गुण जो है हमारे भीतर भी प्रवेश करने लगेंगे जो वृत्तासुर में है। ये व्यवहारिक है, ये बिल्कुल संभव है। शुद्ध भक्ति संभव है कि नहीं, इसको हमें बताइए, हाथ खड़ा करिए। अगर किसी को विश्वास नहीं है तो बताइए, हम इसे कितने भक्त मानते हैं कि हमारी संस्था में शुद्ध भक्ति करना संभव है? कुछ लोग सोच रहे हैं, सोचिए मत। हरी हरी हो जाएगा, ऐसे ऐसी परिस्थिति आ जाएगी, क्योंकि जब देखेंगे शुद्ध भक्ति कहीं वास ही नहीं कर रही है, शुद्ध भक्ति कहीं दिखाई नहीं पड़ रही है, तो हम भी ये सोचने लग जाएंगे क्या संभव है, ये हो सकता है हमारी संस्था में? अच्छा, हमें तो नहीं लगता। तो इसलिए हमें बहुत सावधान रहना है, बहुत सारे एल्यूरमेंट्स हैं हमारी संस्था में, क्योंकि हमारी संस्था प्रचार की संस्था है। इतना ऐश्वर्य है यहां पर, इतना लाभ पूजा प्रतिष्ठा आपको मिलता है, इससे हमें स्वीकार नहीं करना चाहिए। तरंग रंगने का मतलब जानते क्या है? भक्त जब भक्ति करता है तो उसको लाभ पूजा प्रतिष्ठा मिलेगी, शुद्ध भक्ति भी कोई करेगा तब भी मिलेगी, लेकिन जो भक्त होता है, भगवान का जो शुद्ध भक्त होता है, उस लाभ पूजा प्रतिष्ठा को हृदय से स्वीकार नहीं करता है। तो यह अंतर है, तो उसको स्वीकार नहीं करना है। कोई प्रशंसा करे तो सोचे आप ही परम वैष्णव हैं, आप मां भागवत हैं, तो हम स्वीकार कर लेते हैं उसको, हाँ ये जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं। क्यों क्यों ऐसा स्वीकार करते हैं? क्योंकि मैं इंद्रियों का गुलाम हूं, आपकी जो इंद्रियां हैं, आपकी जो जीवा है मेरी प्रशंसा कर रही है, मैं आपकी जीवा का गुलाम बन गया हूं, क्योंकि आपकी जीवा मेरी प्रशंसा कर रही है, मैंने मान लिया है कि मैं यही हूं। ये समस्या है, और वही जीवा से कल आपकी बुराई भी हो सकती है, तब हमें अकल आएगी, अरे ये तो बुराई कर रहा है, इसमें तो बड़ा विश्वास था, मैंने सोचा कि ये प्रशंसा कर रहा है और मैंने अपना इमेज भी बना लिया, अब मुझे धोखा दे रहा है। ये सब जो है बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन, बहुत सारी जो है बाधाएं इस प्रकार भक्ति मार्ग में आ जाती हैं, और एक बार इसे फंस गए फिर बहुत समय निकलता है इसमें से बाहर निकलने। विश्वनाथ जी ठाकुर ने बोला है इसका सेसेशन होता है रुचि की अवस्था में, भक्ति उत्थान तक इतनी आसानी से नहीं होता है। तो हम सबको इससे बचने का पूरा प्रयास करना चाहिए, और जितना बचने का प्रयास करेंगे उतना हम लोग भक्ति में आगे बढ़ पाए, नहीं तो हम ऐसे फंसे रह जाएंगे। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का जो शिष्टाष्टकम है आज भी इसका उच्चारण करते हैं, हम ये नहीं बोल सकते नहीं नहीं प्रभु जी कैसे संभव है प्रचार में, तो चैतन्य महाप्रभु का ये जो वाक्य है गलत साबित होता है। फिर ना धनम ना जन्म, ना धनम ना जन्म ना सुंदरीम कविताम जगदीश कामये मम जन्मनी जन्मनीश्वरे भवतात भक्ति रह चुकी थी, ये जो श्लोक है आज भी लागू होता है इस कौन में। ना जन्म जो है इसका अर्थ क्या है कि जन्म जो है वो गुरु की सेवा में है, जन्म जो है वो कृष्ण की सेवा में है, मेरी सेवा में नहीं है। ना जन्म का अर्थ ये है, तो जितने भी जन्म इकट्ठा कर रहा हूं भक्ति मार्ग में लगाने के लिए वो सब प्रभुपाद जी की सेवा में है, वो गुरु परंपरा की सेवा में, तब मेरी भक्ति जो है सुरक्षित रहे। इसलिए ट्रांसपेरेंट होना बहुत जरूरी है वैष्णवों को, भक्तों को। जितनी ट्रांसपेरेंसी होगी गुरु परंपरा के लिए, उतना हम सुरक्षित रहेंगे भक्ति के मार्ग में, नहीं तो फंस जाएंगे उनको। क्योंकि हमारे अंदर उतनी योग्यता है नहीं, शायद हमारे अंदर उतनी पात्रता नहीं है कि उतना सम्मान स्वीकार कर सके। इसलिए श्री रूप गोस्वामी ने भावुकता के आधार पर विभाजन नहीं किया। कई बार क्या होता है कि कई बार, क्योंकि हम ग्रंथ नहीं पढ़ते हैं प्रभुपाद जी के, किसी भी भक्त में इतनी श्रद्धा डाल लेते हैं, इतने विश्वास डाल लेते हैं, और उस व्यक्ति को, उस भक्त को जो इतना एलिवेटेड समझते हैं, लेकिन वास्तव में वो उतना होता नहीं। लेकिन रूप गोस्वामी जो है वो भावुकता पर शास्त्र नहीं लिख रहे हैं। रूप गोस्वामी क्या लिख रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। कृष्णेति यस गिरितम मनसा द्रियेत, वो कह रहे हैं जो हरिनाम ले रहा है उसको मन से आदर दो। फिर क्या बोल रहे हैं, दीक्षा से चेत प्रणत भी भजंतम ईशम, जिसने आध्यात्मिक दीक्षा ले लिया उसको दंडवत करो। फिर क्या बोल रहे हैं, सुश्रुषया भजन विज्ञम अनन्य मन्य निंदादि शून्यम हृदय में क्षिता संगम लब्ध्या। इसका मतलब यह है कि जो भजन में विज्ञ है, भगवत सेवा में तत्पर है, अन्यों की निंदा से रहित है, ऐसे भक्तों का संग करो, श्रील रूप गोस्वामी कह रहे हैं। देखिए श्रील रूप गोस्वामी जो शास्त्र के आधार पर श्रील रूप गोस्वामी समझा रहे हैं कि किस तरह से हमें भक्तों का संग करना चाहिए, भावुकता के आधार पर हम कितनी श्रद्धा डाल रहे हैं किसी भक्त के ऊपर, पता चला कि उसका वो स्टैंडर्ड ही नहीं है, तो हम लोग स्वयं भक्ति से च्युत हो जाएंगे। तो इस प्रकार से जब वीक फेथ होता है शास्त्रों में, हम इस प्रकार का सेंटिमेंटल फेथ अप्लाई करते हैं किसी भी भक्त में, जो कि रूप गोस्वामी के द्वारा अनुमोदित नहीं है। इसलिए बहुत सावधान, इसलिए भक्तिनो ठाकुर ने भी वैष्णव भजन में लिखा है, शकले समाने कोरिते शक्ति देहो नाथ जत जत। इसका मतलब क्या है कि आप सबका सम्मान करो लेकिन पात्रता के अनुसार। भक्तिनो ठाकुर ने यही बोला, सबको आप परम वैष्णव समझ लो, सब परमहंस है जी, तो फिर आप स्वयं परमहंस हैं। अगर आप सोचते सब परमहंस हैं तो उसका मतलब खुद परमहंस है, क्योंकि परमहंस ही ऐसा विचार रख सकता है। तो इसलिए हम लोग बड़ा सावधान रहे संस्था में रहकर, किसका संग करना चाहिए, किसका संग नहीं करना चाहिए, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, हम किस उद्देश्य से आए थे, हमें वृत्तासुर के पक्षियों पर चलने का प्रयास करना चाहिए। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है? कोई समीक्षा है? वैसे तो बहुत प्रश्न होते हैं यहां पर।
बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, वेरी इंस्पायरिंग और बहुत ही उत्साहवर्धक, और हमें रिमाइंड कराया कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, और अक्सर हम भूल जाते हैं डे टू डे बिजनेस में। बहुत धन्यवाद आपका। और जब हमारे अंदर ये अनर्थ उत्पन्न होते हैं, कोटि नाथ की पूजा, अल्लाह प्रतिष्ठा की इच्छा, दिक्कत यह है कि भक्त तो अपने खुद पहचान खुद नहीं कर पाता, और कैसे को उखाड़ के फेंका जाता।
इसका सबसे उत्तम तरीका है, जब भी कोई प्रशंसा करे, हमें अपने गुरु परंपरा की प्रशंसा करनी चाहिए। देखिए क्या होता है, कर्जे में कब पड़ते हैं, जब लेकर देते नहीं। हमेशा याद रखना चाहिए, वैराग का सबसे बड़ा प्रिंसिपल है, किसी से कुछ मिले तो उसको वापस दे दो, वहीं पे न्यूट्रल हो जाएगा, नलिफाई हो जाएगा। लेकिन आपने केवल चुपचाप स्वीकार कर लिया, मौनम स्वीकृति लक्षणम, तो फिर फंस जाए। इसे कभी कोई प्रशंसा करे हमारी, तो हमें तुरंत उस भक्त की प्रशंसा करनी चाहिए, और या तो फिर अपने गुरु परंपरा की प्रशंसा करनी चाहिए। यह शिष्टाचार है, लेकिन हम चुपचाप स्वीकार कर लेते हैं, उसी में समस्या है। इसलिए तो जब कोई दंडवत करता है, बहुत बड़ा कर्जा लेते हैं हम लोग, तो बदले में जब दंडवत नहीं कर पाते हैं तो बड़ी समस्या है। तो प्रभुपाद ने कहा कि जब दंडवत कर रहे हैं कोई, बहुत सारे भक्त लोग, और कोई चरण छू रहा है, कोई कुछ कर रहा है, आप भीड़ में खड़े हैं, आप रेसिप्रोकेट नहीं कर पा रहे हैं, तो प्रभुपाद कहते हैं उस समय हमें गुरु परंपरा का स्मरण करना चाहिए, तो इस तरह से वो नलिफाई होता है। तो बेसिकली जब लेते हैं तो उसको दे देना चाहिए, या लेके जो है किसी और को दे दीजिए। जैसे मान लीजिए आपके बर्थडे में, आपके जन्मदिन में है, बहुत गुणगान हो रहा है आपका, और आपको बहुत सारे गिफ्ट दिए जा रहे हैं, तो श्रद्धा है भक्तों में, देते हैं तो उसको मना मत करिए, ले लीजिए, आगे दे दीजिए। इस तरह से आप डिटैचमेंट, तो ये आठ है डिटैचमेंट का, वैराग की कला। तो आप लीजिए, आगे दीजिए, लेके जमा मत करिए, उसमें गड़बड़।
फिर आपने बताया कि कभी कभी होता है कि हम लोग शुरुआत में ही ब्रांचेज में,
इसके लिए तो प्रभुपाद जी के ग्रंथ पढ़ने पड़ेंगे भाई, इसलिए तो हमें सुनना है, हियरिंग बहुत जरूरी है, प्रभुपाद की बुक्स पढ़ना बहुत जरूरी है। वृत्तासुर की कथा पढ़ी आपको पता चल जाएगा कि मैं उस शाखा में बैठा हूं। साधु संघ, साधु संघ ही एक तरीका है जिसके द्वारा इस संघर्ष से बचा जा सकता है, और कोई तरीका नहीं है। जैसे हमारे गौरांग प्रभु हैं चौपाटी के, ठीक है, वो अपने गुरु महाराज को उन्होंने अप्रोच किया कि महाराज प्रचार के कारण जो है बहुत लोग प्रशंसा करते हैं, इसे कैसे बचा जाए, तो मुझे कोई सेवा में चेंज मिल सकता है? तो महाराज ने क्या किया, उनको फिर किचन में लगा दिया, कुकिंग में लगा दिया, कि आप सभी भक्तों की सेवा करो, सबके लिए प्रसाद हो। तो ये विनम्रता के कारण भी होता है, लेकिन कहने का अर्थ यह है कि जो जब तक हम वैष्णों के पास नहीं जाएंगे, गुरु के पास नहीं जाएंगे, इस अनर्थ से बचना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वैष्णों के पास ही वो शक्ति होती है जो हमें मिथ्याहंकार से बचा सकते हैं, और कोई तरीका नहीं है, और कोई तरीका नहीं है, ज्ञान से, तपस्या से, और कोई इसका तरीका नहीं है जिसके द्वारा इसे बचा जा सके। केवल एक ही तरीका है कि ऐसे वैष्णों के चरण में जाएं, शरण में जाएं, जिनके नाम में रुचि है, जो स्वयं इन चीजों से मुक्त हैं, जब उनकी सेवा करेंगे, उनके सानिध्य में रहकर सेवा करेंगे, तो इस अनर्थ से हम छुटकारा पाएंगे। हरे कृष्ण ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम हमारे जी बोलिए। सुनाए इसका
हरे कृष्ण प्रभु।
हरे कृष्ण।
थैंक यू फॉर द नाइस निर्देश जो आपने दिए हैं, दो आर वेरी लेट बट स्टिल जो कुछ मैंने सुना है दैट इज वंडरफुल। फिर मैं एक मेरा प्रश्न है कि कई बार कुछ भक्त मिलते हैं तो जबरदस्ती आपके पांव छू देते हैं, मना करने पर भी वो मानते नहीं हैं, ऐसा हमको नहीं करना चाहिए, फिर हम छूना चाहते हैं तो कुछ नहीं करते, तो ऐसे में क्या करना चाहिए?
ये बहुत बड़ी समस्या है। हमने कई मंदिरों में सुना कि ऐसा जब होता है और पता चलता है कि ये जबरदस्ती छू रहे थे दूसरे का, तो वहां पे दंड दिया जाता है कि जो भी इस तरह से करेगा उसके पांव सब भक्त लोग मिलकर छुएंगे, तो इस तरह से फिर ये बंद हो जाता है। तो इस तरह से कोई हमें प्रोसेस, कोई सिस्टम बनाना पड़ेगा अगर ये बहुत ज्यादा, क्योंकि देखिए इस सब का बड़ा महत्व है, लेकिन अगर मजाक बन जाए तो फिर वो ठीक नहीं है ना, कि भक्ति का बहुत ही पावरफुल अंग है। भक्त पद दुली, भक्त भक्त पद जल, भक्त भुक्त अवशेष, यही तीन महाबल है कि नहीं? इस बहुत महाबल हैं भक्तों की चरण धूली, लेकिन बड़ी सावधानी से लेना चाहिए, है कि नहीं? चरण धूली लेने के कई और तरीके हैं, वो आपको नहीं बताएंगे अभी, नहीं तो फिर यहां वो भी शुरू हो जाएगा सिस्टम। कई और टेक्निक्स हैं जिसके द्वारा आप चरण ना भी छुएं फिर भी चरण धूली ले सकते हैं आप।
हरे कृष्ण। कई बार फुल टाइम भक्त यहाँ पर अपना जीवन सरेंडर किए हुए हैं, वो भी प्रयास करते हैं।
नहीं, भक्तों का भाव अच्छा है, लेकिन अब क्या हाँ वो मतलब कि बहुत चीप नहीं बनना चाहिए वो, लेकिन बहुत अगर ज्यादा हो रहा है तो फिर सिस्टम बनाना पड़ेगा, फिर जो भक्त ऐसा करेगा उस भक्तों के चरणों को धो के पिया जाएगा सभी भक्तों के द्वारा। हरी हरी अपना बंद हो जाएगा अगले दिन। हरे कृष्ण। श्री श्री राधिका रमान की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, समवेद भक्त वृंद की जय, गौर प्रेमानंद।